Mercy, Savior. Om Namah, Siddhe Vyah. Om Namah, Siddhe Vyah. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajhayanam. Namo Loe Savasahunam. Sayalinda Vindavandiya Mahinandiya Bhauva Paumavana Sandam. Ahinandana Jinanaham. Nami Una Uvakkamam Vocham. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंड आगम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 15वीं पुस्तक में जो शेष 18 अनुयोग द्वारों में से चर्चा चलेगी, उसमें हम उपक्रमण अनुयोग द्वार को देखते हुए पृष्ठ संख्या 82 पर आ गए। 82 देखो यहाँ अपना क्या विषय चल रहा है, स्थानों की बात चल रही है इसमें। 81 पृष्ठ पर हम देखते हैं अल्प बहुत्व के बाद यहाँ भी किसके कितने स्थान हैं, उदीर्णा के स्थानों की चर्चा चल रही है। उदीर्णा के स्थानों का अर्थ होता है कि जो ज्ञानावरणी की प्रकृतियाँ हैं उनमें पांचों ही ज्ञानावरण की एक साथ उदीर्ण होती है, तो पांच का एक स्थान कहने में आएगा। दर्शनावरण में जब नींद नहीं है, जागृत अवस्था है, तो चार की उदीर्ण होती है, तो चार वाला एक स्थान, और जब नींद होती है तब पांच वाला एक स्थान। तो वो पांच में निद्रा हो सकती है, प्रचला हो सकती है, ऑप्शनल, पांच निद्राओं में से कोई भी एक निद्रा और ये अन्य चार, इसलिए चार का एक स्थान और पांच का एक स्थान, इसे दो स्थान दर्शनावरणी में है। ये हमने देखे थे, अंतराय की बात यहाँ नहीं लिखी थी, पर अंतराय में भी पांच का उदीर्णा का स्थान होगा। पांचों का उदय चलता है एक साथ, पांचों की उदीर्णा होगी, एक ही स्थान है उसका भी। वेदनीय के स्थान उदीर्णा नहीं है ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि एक का तो एक की उदीर्णा होती, तो ऐसे उसके अनेक प्रकृतियों का स्थान ऐसी बात नहीं है। मोहनीय में बहुत सारे वेरिएशंस है, तो मोहनीय में उन्होंने एक से शुरू किया, उल्टा क्रम। एक का स्थान कहाँ होगा, जहाँ अकेले एक संज्वलन कषाय का उदय होगा, उदीर्णा होगी तहाँ। तो क्रोध की या मान की या माया की या लोभ की एट ए टाइम होती है, तो जब अवैध भाग शुरू होता है नवे गुण स्थान का, वहाँ से दसवें के अंत तक एक कषाय की उदीर्णा है, इसलिए वो एक प्रकृतिक स्थान। अब एक प्रकृतिक स्थान है, उसमें ऑप्शंस कितने हैं एक वाले के लिए, भंग कितने हैं ऑप्शंस है, चार हो गए, क्रोध या मान या माया या लोभ, तो इसको चार भंग कहने में आते हैं। अभी हम ऊपर से नीचे आते हैं, दो प्रकृतिक स्थान जहाँ एक वेद और एक कषाय का उदय है, संज्वलन एक कषाय और एक वेद, तो हम वेदों में तीन ऑप्शंस है, तो तीन और यहाँ चार, तो चार्त्रिक 12 भंग वहां हो गए। यहां तक समझ में, तीन प्रकृति वाला कोई स्थान नहीं है। उसके नीचे आते हैं तो आठवें गुण स्थान में चार प्रकृतिक स्थान हो सकता है। चार प्रकृतिक स्थान कैसे होगा, एक वेद, एक कषाय, एक युगल। तो पहले तो हमने, हाँ, तो और भय जुगुप्सा नहीं है वहां पर, दोनों का उदय नहीं है, उदीर्णा नहीं है, ऐसा जीव लिया है, तो वहां कितने भंग होते। तो हमने पहले चार्त्रिक 12 तो देखे थे, और उसमें दो युगल, हास्यरति या शोकरति, तो बारदोनी 24 घटित हो गए। ये तो 24 यह तो मूल स्थापित ही करने। अब इसके आगे पांच प्रकृति वाला स्थान होगा, तो पांच प्रकृति वाला कैसे हो सकता है, एक तो हमें भय और जुगुप्सा दोनों नहीं है ऐसा कहा था, तो उसमें से एक किसी को लेंगे उदीर्णा वाला, तो पांच प्रकृतिक वाला होगा। परंतु भय भी ले सकते और जुगुप्सा भी ले सकते, तो दो भंग तो वहां हुए। पहले तो हमने 24 देखे थे, अब ये दो भंग हुए। पांच प्रकृति वाला अन्य कहां संभव है? हाँ, सातवें गुणस्थान में जिसको भय जुगुप्सा नहीं है परंतु सम्यक प्रकृति है। इस तरह से वहां घटित होगा। तो इसके लिए वो और एक भंग बढ़ जाएगा। कल हमने पांच प्रकृति के चार अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखे थे। हाँ, सातवें में दो स्थान हो गए और पांचवें में दो अलग हो गए। एक सम्यक प्रकृति का उदय लिया और भय जुगुप्सा का अनुदय लिया। हाँ, और पांचवें वाला क्षय क्या उपशमित है, उसमें सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है परंतु एक वेद, दो कषाय, हाँ, और एक युगल और भयजुगुप्सा नहीं है, ऐसा जीव हम ले सकते हैं। पांचवे में आए ना, वो प्रत्याख्यान हो गया, प्रत्याख्यान हो गया। सातवें में थे तब तक तो प्रत्याख्यान को नहीं लिया था, एक संज्वलन को ही लिया था और भयजुगुप्सा को एक्स्ट्रा ले लिया था। देखो चार कैसे हमने अलग अलग किए कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन आठवें में लिया, उसमें भय या जुगुप्सा ली। पहले तो 24 अभी हमने फिक्स किए, अभी उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यानी एक वेद, एक कषाय और दो युगल, इसमें यानी युगल में ऑप्शन, दो युगल में ऑप्शन। इस तरह से पहले तो ये 24 फिक्स हो गए, अभी उसके आगे हमको देना देखना है। यानी एक वेद, एक कषाय, युगल यानी वो दो, चार हो गए, और भय जुगुप्सा दोनों को लिया, भय और जुगुप्सा। तो ये हमको पांच लेना है, तो अकेला भय लेना, पांच वाला हो गया। अकेले जुगुप्सा ली, ये भी पांच वाला होगा आठवें में। अब सातवें में भी पांच का पॉसिबल है। कैसे? सातवें में सम्यक प्रकृति लेना, ये ऊपर के यही रखना, और भय जुगुप्सा के लिए जीरो लिखना। तो सातवें के यानी वेदक सम्यक दृष्टि के ये हो सकता है। अब पांचवें में आना, एक कषाय बढ़ाना, परंतु पांचवें वाला क्षय लेना, सम्यक प्रकृति के बदले कषाय एक बढ़ाना। तो एक वेद, सम्यक प्रकृति नहीं लेना, एक वेद, अभी दो कषाय हो जाएंगे प्रत्याख्यान आवरण लिए, युगल वाले दो, और इसमें दो दो चार एक पांच हो गए, फिर इसमें भी शून्य, एक युगल लिया ना, शून्य। इस तरह से ये चार अलग अलग ऑप्शन हमने देखे थे। तो इसलिए यहाँ 24x4 भंग बताए, यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था। अभी हम छह प्रकृति के स्थान देखते हैं। छह प्रकृतियों के प्रवेशक के, प्रवेशक यानी उसके उदीर्णा वाले, सात 24 भंग होते हैं। यानी सात अलग अलग पॉसिबिलिटीज होगी अभी छह प्रकृति वाले स्थान। तो अभी हमने जो आठवें गुणस्थान वाला देखा था, उसमें हम भय और जुगुप्सा दोनों को लेते हैं, एक दो, दो चार, दो छह, छह प्रकृति का स्थान यहाँ घटित होगा। क्योंकि पहले हमको 24 तो फिक्स रखा है, ये वाला जो है ना, इसके 24 भंग होते हैं। फिर भय जुगुप्सा का यानी एक एक ऑप्शन ये हो गया, दो नहीं गिनना, दोनों को एक साथ लेना, दोनों को एक साथ लिया, क्योंकि अभी हमें छह प्रकृति चाहिए ना। अब दूसरा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? हाँ, तो सातवें में सम्यक प्रकृति बढ़ा दो, ये बीच वाला ऐसा ही रखो, भय में एक ले लो, एक बार जुगुप्सा को ले लो, तो दो तो ये हो जाएंगे, दो अलग अलग हो जाएंगे ना इसमें। अब क्षायिक वाला लेना, सातवा ही क्षायिक वाला लेना, सम्यक प्रकृति नहीं होगी परंतु भय जुगुप्सा एक साथ ले सकते हैं। यानी क्षायिक सातवें वाला, ये सातवें वाला वेदक लिया था, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर में, हाँ उसमें दो भंग हो जाएगी, दो ऑप्शंस हो जाएंगे। इसमें भी दो ऑप्शंस लिए थे ना हमने, यहाँ भी दो ऑप्शंस लिए थे, और इसमें भी अभी नहीं, पर इसमें भाई जुगुप्सा दोनों एक साथ लेना है, शाइक वाले के साथ छः करना है ना, हाँ ऊपर तो दो थे, अब शाइक वाले के साथ भय और जुगुप्सा एक साथ लेना है, सम्यक प्रकृति को नहीं लेना। एक वेदक के साथ सम्यक प्रकृति लिया था, एक भय या एक जुगुप्सा। शाइक के साथ सम्यक प्रकृति को नहीं लिया, एक वेद, एक कषाय, एक युगल, और भय जुगुप्सा दोनों एक साथ लिया, तो ये छह प्रकृति का और एक विकल्प बन गया। हाँ वो बीच वाला दो भंग गिनेंगे तो एक, ये दो, दो में फिर दो भंग, एक शाइक वाला भंग, सातवें वाले। अब पांचवें गुणस्थान में ले सकते हैं हम, पांचवें गुणस्थान में एक वेद, एक दो कषाय भी, पांचवें वाला पांचवे वाला क्षायिक लेंगे हम पहले, तो एक वेद, दो कषाय, ये एक युगल, यहाँ तो पांच हो गई ना इसकी, हाँ हाँ ये पांच हो गई, और भय और जुगुप्सा अलग अलग लेना, इसके दो विकल्प हो जाएंगे। क्षायिक लिया ना, अलग अलग लिया, दो भंग किए, छः छः निकालने, तो सात भंग हमको, सात पॉसिबिलिटीज लेना है। आठवां कहाँ आया अभी, नहीं नहीं दो ही निकाले, सातवें के दो निकाले और क्षायिक का एक निकाला, सातवें में पहले में पहले हमने वेदक के लिए सम्यक प्रकृति, ये पांच लिए, सम्यक प्रकृति लिए, अकेला भय लिया, दूसरी पॉसिबिलिटी अकेली जुगुप्सा ली, फिर सातवें के क्षायिक में वो पांच प्रकृति लिए, एक वेद, एक कषाय, एक युगल, हाँ और भय जुगुप्सा एक साथ लिए, वहां सम्यक प्रकृति को निकाला और भय जुगुप्सा को एक साथ लिया, अभी तक चार ही विकल्प हो गए। हाँ अभी पांचवें गुणस्थान का पहले हम क्षायिक लेते हैं, तो ये ओरिजिनल पांच हमने जो गिनी थी वो उसमें कैसे लेना है, एक वेद, दो कषाय, एक युगल, ये पांच यहां हो गई, अकेली भय, अकेली जुगुप्सा, ये दो विकल्प और हो गए, और सातवां विकल्प है, पांचवे की सातवां विकल्प, पांचवा ही गुणस्थान, वेदक समय दृष्टि, सम्यक प्रकृति का उदय है, और जीरो भय और जुगुप्सा लेना ही नहीं, जीरो रखना उसमें, तो छह प्राकृतिक स्थान होगा। देखो ये वेदक के लिए पांचवा वेदक, एक सम्यक प्रकृति, एक वेद, दो कषाय, दो 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 चार दो छः, तो भय जुगुप्सा के लिए जीरो रखना, इस तरह से ये सात विकल्प हो गए, तो 24x7 किए भंग उसके, सात अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, छः के स्थान में सात अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, उसमें बेसिक तो हमने वो 24 निकाले ही थे, उसको सात से गुणा करना, इतने भंग हो जाएंगे। अब सात प्रकृतियों के प्रवेशक के 10x24 भंग होते, ये सात प्रकृतियों के कैसे गिनना, अभी आठवें गुणस्थान में तो सात घटित होगी ही नहीं, क्योंकि आठवें में एक वेद है, एक ही कषाय है, एक युगल है, तो ये तो पांच होते, यहाँ चार हो गए, हाँ दोनों एक साथ गए तो भी छह होगी, सातवीं प्रकृति नहीं होगी यहाँ पर, आठवें में हो नहीं सकते, तो सातवें में हो सकती है, तो सात वेदक को ले लेंगे पहले, देखो सातवां वेदक गिनो, एक वेद। अच्छा पहले सम्यक प्रकृति ले लो, सम्यक प्रकृति एक हो गई, एक वेद, एक कषाय, एक युगल। हाँ अभी दो दो, दो एक तीन एक चार एक पांच हुए, भय जुगुप्सा दोनों लेना, भय जुगुप्सा दोनों, ये वेदक में हो गए। क्षायिक में तो क्षायिक में पांचवा लेना पड़ेगा। देखो वेद सातवें में वेदक में घटित होगा, क्षायिक में घटित नहीं होगा, बात हुई ना। अभी हम पांचवे में आते हैं। अब पांचवे गुणस्थान में पांचवा गुणस्थान, यदि हम यहाँ हाँ क्षायिक लेते हैं तो एक दो 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 चार एक पांच और दो, एक क्षायिक के साथ, और वेदक के साथ लेना है तो एक सम्यक प्रकृति लेंगे, तो फिर ये आगे की ये बात रहेगी। एक वेद, दो कषाय, दो 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 चार एक दो छः, एक बार भय, एक बार जुगुप्सा। हाँ तो अभी नीचे आना और चौथे में आइए। तो पांचवे गुणस्थान में क्षायिक लिया तो सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है, वहाँ एक वेद, दो कषाय, एक युगल और भय जुगुप्सा दोनों लिए, ये साथ हुए। वेदक में सम्यक प्रकृति बढ़ाना और वहां भय जुगुप्सा दोनों एक साथ लिए थे, वो ऑप्शनल लेना। अब चौथे में घटित करेंगे, चौथे में कितने तीन कषाय हो गए, तो हम मूल में देखते एक वेद, तीन कषाय, एक युगल, तीन दो पांच एक छः, और भय और जुगुप्सा, तो ये क्षायिक लेना पड़ेगा या उपशमिक, तो भय और जुगुप्सा के दो अलग अलग करेंगे। हाँ तो सम्यक प्रकृति के साथ अगर लेते हैं तो जीरो लेना पड़ेगा, सात लेना है। तो वेदक में सम्यक प्रकृति बढ़ गई तो यहाँ तीन एक चार दो छः एक सात यहाँ हो गए और यहाँ जीरो करेंगे हम औपशमिक और क्षायिक में। हाँ अभी हाँ सात प्रकृति का तो नीचे भी आएगा, तीसरे में भी होगा, दूसरे में भी होगा, पहले में भी होगा। अनंतानु ये चार बढ़ जाएगी और भय जुगुप्सा में जीरो कर देंगे हम, इस तरह से ये अलग अलग प्रकृति इसको होते हैं। सात प्रकृतियों के प्रवेशक के 10-24 भंग होते हैं, आठ प्रकृतियों के प्रवेशक के 11-24 भंग होते हैं, और नौ प्रकृतियों के प्रवेशक के 6-24 भंग होते हैं। ये नौ वाले वो तो पहले दूसरे सात आठ नौ तीसरे चौथे तक हो गए मेरे ख्याल से नौ। दस प्रकृतियों के प्रवेशक के 1-24 भंग होते हैं। कौन सा है दस प्रकृति वाला? मिथ्यात्व में ही होता है, अन्यत्र नहीं होगा। मिथ्यात्व में भी वो भी भय जुगुप्सा दोनों को साथ लेना, एक मिथ्यात्व प्रकृति, चार कषाय, पांच हुए, एक युगल सात हुए, एक वेद आठ हुए और भय जुगुप्सा दस हो जाएंगे। किसमें? हाँ एक एक ऑप्शन में। तो दस प्रकृतियों के प्रवेशक के 1-24 भंग होते हैं। इन भंगों के प्रमाण की प्ररूपणा के लिए यह गाथा कही जाती है, वह इस प्रकार है। एक कहा कितने भंग होते हैं वो यहाँ गाथा में बताए हैं। एक छक्के कारस दस सत्त चुख में कयम चेव दो सुय बारस भंगा एक कमी होती चारी। दस नौ आठ सात छ पांच और चार प्रकृतियों के प्रवेशक के यानी उदीर्णा वालों के क्रम से एक यानी दस प्रकृतियों का एक भंग है, भंग एक है। फिर नौ वाले के छह भंग है, ग्यारह जो है आठ वाले के ग्यारह भंग है, सात के दस भंग है, छह के सात है और पांच के चार है और चार का एक है। इतनी शलाकाओं से युक्त चौबीस भंग, यानी ये जो हमने संख्या पढ़ी मल्टीप्लाइड बाय चौबीस, क्योंकि बेसिक हमने वो चौबीस देखे थे, उससे इसको गुणा कर देना। दो प्रकृतियों के प्रवेशक के बारह तथा एक प्रकृति के प्रवेशक के चार भंग होते हैं। बाकियों को तो चौबीस से गुणा किया, परंतु जहां जो दो प्रकृति होती है वहां वेद तीन और कषाय चार से बारह भंग होते हैं, और जहां एक प्रकृति है संज्वलन के कषाय वहां चार क्रोधमान मायलोभ के चार भंग होते हैं। इस प्रकार स्थान समुत्कीर्तना समाप्त हुई, स्थानों का वर्णन समाप्त होता है। स्वामित्व की प्ररूपणा में ये दो सूत्र गाथाएं हैं यथा। अभी इनके स्वामी कौन है, पहले तो कहा कितने प्रकृतियों का होता है इतना ही बता दिया हमने, तो इसमें देखा आठवां गुणस्थान वगैरह और कैसे क्या हमने डिराइव किया, तो अभी ये गाथाओं के द्वारा बताते हैं। सत्तादिदसुक्कसम मिच्छेषण मिश्रेण उक्कसम छादीयण उक्कसम अविरद सम्मतमादिस पंचादि अठ निहणा विरदा विरदे उदीरण ठाण एगादितियरहिदा सत्तुक्कसाय विरदस। सात को आदि लेकर उत्कर्ष से दस प्रकृतियों तक के, यानी सात आठ नौ और दस, चार स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं, अर्थात इन चार स्थानों का स्वामी मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ये कैसे घटित होते हैं, किसी को सात का स्थान है, किसी को आठ का, किसी को नौ का, किसी को दस का। अभी हम उदय के कूट देखते हैं। एक मिथ्यात्व प्रकृति चार प्रकार के क्रोध या मान या माया या लोभ, वेद तीन, युगल और भय जुगुप्सामा उसमें जीरो एक एक और दो, इस तरह से भंग होते हैं। हम पहले में पहले देखते एक साइड से इसकी टोटल करना, एक और चार पांच, एक छः, छः सात आठ नौ, सॉरी जीरो पहले लेते हैं, जीरो लेते हैं तो आठ हो गए, तो ये ठीक सात को हम घटित करेंगे बाद में, आठ होता है। फिर हम एक चार पांच एक छः दो आठ भय को लेंगे नौ होंगे, जुगुप्सा को लेंगे तो भी नौ होंगे, यानी वो कैसा कहेंगे आठ नौ नौ दस, ऐसे चार भंग होंगे। नौ दो बार है पुनरुक्त है इसलिए हम एक बार ही कहेंगे, और जीरो वाला हम दोनों को लेते हैं तो दस हो जाते हैं। आपका प्रश्न है सात कैसे हो गए, हाँ अनंत अनुबंधी की विषय योजना करके मिथ्यात्व में आया हुआ एक आवली काल तक उसका उदय नहीं उदीर्णा नहीं है, तो वहां चार के बदले यहाँ तीन ले लेंगे, तो एक तीन चार एक पांच दो सात, हाँ बस जीरो, तो ये सात वाला भंग अनंत अनुबंधी की विषय योजना करने वालों को होगा।
दो के दो लेंगे कि एक लेंगे, दो लेंगे ना,
हाँ परंतु कहने के लिए नौ का स्थान है भंग दोन, स्थान नौ का कहलाएगा, नौ के दो स्थान ऐसा नहीं कहते, नौ के स्थान में दो भंग ऐसा कहेंगे, एक हाँ एक हाँ, तो एक भय का नौ का स्थान और एक जुगुप्सा का नौ का स्थान, और हाँ अनंतानुबंधी को निकालो और इसके दोनों को ले लो, हाँ तो उसका भी हो जाएगा। यानी अनंतानुबंधी रहित वाले के अगर गिनने हैं स्थान तो हम ऐसे, हाँ तो हो जाएंगे उसके भी, अनंतानुबंधी के भी तीन ऑप्शंस हो जाएंगे। अनंतानुबंधी में तीन ऑप्शन कैसे गए, एक तीन चार एक पांच दो सात, ये सात वाला हुआ, फिर इसको लेंगे तो आठ के दो हो जाए, सात आठ आठ और इसको लेंगे तो नौ, यानी अनंतानुबंधी के विसंयोजन वाले के सात आठ के दो और एक नौ, और बिना यानी अनंतानुबंधी के विसंयोजन नहीं है, इसका उदय है। तो उसे आठ नौ नौ दस, यानी आठ नौ दस हम कहेंगे उसको, और ये सात आठ नौ हो जाएंगे इसके। अब आगे पढ़ेंगे हम, सात को आदि देकर उत्कर्ष से नौ प्रकृतियों तक के तीन स्थान सासादन और मिश्र गुण स्थान में होते हैं। अब सासादन के लिए क्या पोजीशन है? मिथ्यात्व का उदय नहीं है। कषाय कितने हैं? चार हैं। एक वेद, एक युगल, चार एक पांच दो सात हुए, यानी जीरो वाला वो सात वाला हुआ। फिर एक एक लेंगे तो आठ होगा, और भाई जुगुप्सा एक साथ लेंगे तो नौ हो जाएंगे। तो इस तरह से दूसरे गुणस्थान में सात आठ नौ हो जाएंगे। तीसरे गुणस्थान में क्या होगा? यहाँ तो तीन हो जाएंगे, परंतु यहाँ सम्यक मिथ्यात्व आएगा, ये तीसरे गुणस्थान में हो जाएगा। एक सम्यक मिथ्यात्व, तीन कषाय, एक वेद, एक युगल, जीरो लेते हैं तो सात, एक एक लेते तो आठ, और ये दो एक साथ लेते हैं तो नौ। तो सासादन में भी सात आठ नौ और मिश्र में भी सात आठ नौ। छह प्रकृतियों को आदि लेकर उत्कर्ष से नौ तक के चार स्थान छह सात आठ और नौ अविरत सम्यक दृष्टि के होते हैं। अभी अविरत सम्यक दृष्टि जो है चौथे गुणस्थान वाला, तो उसमें भी दो अलग अलग करने पड़ेंगे, एक औपशमिक शायिक के लिए अलग और एक वेदक के लिए अलग। हम पहले वेदक को लेते हैं। वेदक में कैसे कहेंगे हम? हाँ, एक सम्यक प्रकृति, कषाय, तीन कषाय, एक वेद, एक युगल, तीन एक चार एक पांच दो सात, जीरो लेते हैं तो सात आता है, आठ और ये नौ। शायिक अगर या औषमिक लेते हैं तो ये सम्यक प्रकृति का नहीं होगा। नहीं होता तो कैसे होगे? तीन एक चार दो पांच, तीन एक चार दो छः, तो छः सात सात और आठ, छः सात और आठ, और इसके लिए सात आठ नौ। तो चौथे की अगर टोटल करना है छः सात आठ और इसका नौ, ये चार स्थान चौथे वाले के हो गए। अब पांच को आदि लेकर आठ प्रकृतियों तक के चार उदीर्णा स्थान विरता विरत गुणस्थान में होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही लेना, विरता विरत में ये तीन के बदले दो कषाय करना है, कषाय दो हो जाते हैं, सम्यक प्रकृति का उदय है, तो एक सम्यक प्रकृति, दो कषाय, एक वेद, एक युगल, दो एक तीन एक चार दो छः हो गए। छः से शुरुआत करेंगे, छः सात और आठ, और उसमें एक शायिक हो जाएगा तो पाँच छः और सात। तो टोटल कहेंगे हम पाँच छः सात और आठ, क्योंकि छः और सात तो दोनों में कॉमन है। अब कहते एक को आदि लेकर उत्कर्ष से त्रि प्रकृति स्थान से रहित, यानी तीन प्रकृति वाला कोई स्थान नहीं है, तो एक का होगा, दो का होगा, चार का होगा, पांच का, छः का, सात का, तक के छह उदीर्णा स्थान संयत जीवों के होते हैं। संयत यानी छठे से लेकर आगे के कहाँ तक हो गए? हाँ, क्योंकि मोहिनी के उदीर्णा स्थान देख रहे हैं ना, मोहिनी के स्थान देख रहे तो दसवें तक हम कह सकते हैं। तो एक का कहा हमने देखा था दसवें में, और अपगत वेदी नौवें में, उल्टे आ रहे थे हम। दो का स्थान सवेद भाग, नौवें का सवेद भाग, चार का स्थान आठवें में देखा था हमने, उसमें भंग भी हम देख चुके अभी। पांचवें का स्थान आठवें में भी हो सकता है। हाँ, तो कहाँ कितने होते हैं? हमने सारे ऊपर अभी देखे थे, वैसे ही सात के भी उदीर्ण स्थान संयत जीवों के होते हैं। विशेषार्थ, अरे वाह, विशेषार्थ बताए सब पूरा। यहाँ सात प्रकृतियों को आदि लेकर दस प्रकृतियों तक के जो चार उदीर्णा स्थान मिथ्या दृष्टि के बतलाए गए हैं, वे इस प्रकार से संभव है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क में से एक, अप्रत्याख्यान चतुष्क में से एक, प्रत्याख्यान चतुष्क में से एक, संज्वलन चतुष्क में से एक, यानी चार चौकड़ी में से एक कोई क्रोध या कोई मान या, इसलिए वो चार लेना। तीन वेदों में से कोई एक, हास्य रति और अरति शोक में से एक युगल, तथा भय और जुगप्सा, इन दस प्रकृतियों का उदीर्ण स्थान मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में पाया जाता है। इन दस प्रकृतियों में भय और जुगप्सा में से किसी एक के बिना नौ प्रकृतियों का स्थान होता है। भय व जुगप्सा इन दोनों के बिना आठ प्रकृतियों का स्थान होता है, तथा भय और जुगप्सा व कोई एक अनंतानुबंधी कषाय इन तीन प्रकृतियों के बिना सात का स्थान होता है। हमने अभी विस्तार से देखा था उसको। ये तीन स्थान भी मिथ्या दृष्टि के ही संभव है। ये अनंतानुबंधी बिना वाला स्थान तो दूसरे में नहीं होगा, पहले गुण स्थान में ये हो सकता है। देखो ये भय जुगुप्सा की बात ऐसी है, ये प्रकृति तो कैसी बंधने में कैसी है, निरंतर बंधी है, हर समय बनती है, परंतु उदय में कभी भय का उदय होगा, कभी जुगुप्सा का होगा, कभी दोनों का होगा, कभी दोनों का भी नहीं होगा, तो इसका उदय नहीं होते हुए भी वो निरंतर बनती है। वो निरंतर बनती प्रकृति, जैसे ज्ञानावरण की कैसी है, निरंतर बनती, कब से अनादि से बनती आ रही, हर समय बनती है। मिथ्यात्व की जब तक विच्छित्ति नहीं तब तक हर समय बनती है। भय जुगुप्सा भी जब तक उसकी विच्छित्ति बंध की नहीं होगी, हर समय उसका बंध है।
जुगुप्सा का मतलब क्या है?
नहीं, जुगुप्सा यानी घृणा, घृणा घृणा, किसी चीज की घृणा लगती है। अभी याद रखे, हाँ, यानी गंदी की चीज देखकर कैसे होते हैं, घृणा हो जाती है उसके प्रति। इंग्लिश में क्या कहा है ना उसको, निरंतर बंदी कहाँ तक बंधेगी? हाँ, कहाँ तक? उदय की बात नहीं, आठवें गुणस्थान के अंत तक। भय जुगुप्सा के उदय की विच्छित्ति, सॉरी बंद की विच्छित्ति, बंद की विच्छित्ति आठवें के सातवें भाग में। हाँ देखो, उपर्युक्त दस प्रकृतियों के स्थान में से एक अनंतानुबंधी कषाय को कम करके मिथ्यात्व प्रकृति के स्थान में सम्यक मिथ्यात्व के ग्रहण करने पर नौ प्रकृतियों का स्थान होता है, ये तीसरे गुण स्थान में। ये यहाँ समझने में जरा डिफिकल्ट है, हमने जो अभी उदय के कूट बनाए थे उसमें आसानी से समझ में आता है, क्योंकि ये खाली इतने होते हैं ऐसे, वहाँ तो ज़्यादा तो लिखने में तो उतनी लिमिटेशन आती है, देखो मर्यादा है। इसमें भय व जुगुप्सा में से एक के बिना आठ का वो दोनों के बिना सात का स्थान होता है, इन्हें तीसरे गुण स्थान में हमने देखा सात आठ और नौ के स्थान होते हैं। ये तीन उदीर्ण स्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही संभव है। कौन से वाले? ये प्रकृतियां बता दी ना, सम्यक मिथ्यात्व का उदय वाला स्थान वहीं पर होगा, अन्यत्र नहीं होगा। इन तीनों स्थान में से सम्यक मिथ्यात्व को कम करके अनंतानुबंधी कषाय को जोड़ देने पर भी जो नौ आठ व सात प्रकृतियों के तीन उदीर्ण स्थान होते हैं उनका स्वामी सासादन सम्यक दृष्टि होता है, ये अभी हमने उसको भी देखा था। सम्यक तो प्रकृति एक अप्रत्याख्यान कषाय, एक प्रत्याख्यान कषाय, एक संज्वलन कषाय, यानी तीन कषाय, एक वेद, हास्यादि में से एक युगल, तथा भय व जुगुप्सा प्रकृति को ग्रहण कर नौ का, भय व जुगुप्सा में से एक के बिना आठ का, इन दोनों के ही बिना सात का, ये वेदक समय दृष्टि लिया है चौथे वाला, तथा उपशम समय दृष्टि एवं क्षायिक समय दृष्टि की अपेक्षा सम्यक्त प्रकृति को भी छोड़कर छह का ये चार उदीर्ण स्थान अविरत समय दृष्टि गुणस्थान में पाए जाते हैं। अविरत समय दृष्टि के इन चार उदीर्ण स्थानों में से एक अप्रत्याख्यान कषाय को कम कर देने पर जो आठ सात छह और पांच प्रकृतियों के चार उदीर्ण स्थान होते हैं उनका स्वामी संयता संयत होता है। दो कषाय है ना, अभी वेदक प्रकृति के साथ भी ले सकते हैं और बिना उसके भी लेते हैं, इसलिए यहाँ पर पांच छह सात ऐसे हो गया। ये संयता संयत होता है। इसके उक्त चार स्थानों में से एक प्रत्याख्यान कषाय को कम कर देने पर जो सात छ पांच और चार प्रकृतियों के चार उदीर्ण स्थान होते हैं प्रमत्त और अप्रमत्त में वे सब तथा अपूर्वकरण में सात के बिना तीन स्थान पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वो सम्यक प्रकृति वाला स्थान मिलेगा और वहाँ वो नहीं होगा। आठवां गुणस्थान है क्योंकि वहाँ उपशमिक या क्षायिक हो गए। संज्वलन चतुष्क में से एक और तीन वेदों में से एक इन दो प्रकृतियों का स्थान तथा एकमात्र अन्यतर संज्वलन प्रकृति का स्थान, ये दो स्थान अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्राप्त होते हैं, यानी सवेद भाग में दो का स्थान और अवेद भाग में एक का स्थान। तीन प्रकृतियों के स्थान की संभावना ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तथा सूक्ष्म लोभ की अपेक्षा एक प्रकृतिक स्थान सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में भी होता है, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। इन दो गाथाओं की प्ररूपणा करने पर मोहनीय कर्म का स्वामित्व समाप्त होता है। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ, वो हु रस्व चाहिए हुआ। अब कहते हैं एक जीव की अपेक्षा काल, ये स्थान उदीर्णा चल रही है वो स्थानों में ही काल बताएंगे, यानी एक ही प्रकृति का उदीरक है कितने काल तक होगा एक जीव वो बात बता रहे हैं। एक प्रकृतिक स्थान का उदीरक कितने काल रहता है, वह जघन्य से एक समय कैसे होगा, आपने उसको ऊपर से नीचे लाया और दसवें में आते ही एक समय में मर गया, और भी हो सकता है। हाँ, नीचे से ऊपर जाते समय पहले दो प्रकृति की उदीर्णा करता था, अपगत वेद हुआ, एक प्रकृति की उदीर्णा एक समय के लिए और मर गए, तो कितने प्रकृति की उदीर्णा शुरू हो जाएगी। हाँ, कितना कौन सा स्थान होगा, मैंने उदीर्णा का स्थान पूछा। गिनो ना, गिनो, चौथे में आया ना, उपशम सम्यक्त के साथ मरा है भाई, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं होगा। द्वितीय उपशम का काल चल रहा है और नवे गुणस्थान में अपगत वेद होते ही मरा है, अभी उसका उपशम का बहुत काल बाकी है, जो ऊपर चढ़ के छठे तक जाता उसके बाद भी उसका उपशम का काल है, तो उपशम सम्यक दृष्टि है, तो उसके हाँ तीन तीन कषाय, एक वेद, एक युगल, हाँ, और इसमें से पॉसिबल है। हाँ, तो तीन एक चार दो छः, छः सात या आठ, औषमिक समय दृष्टि है वो, अभी वो वेदक इमीडिएट नहीं होगा, देव अपर्याप्त काल में वो औपशमिक समय दृष्टि रहा और बाद में वो क्षोपशम हो जाएगा। देखो ये एक समय घटित हुआ और उत्कर्ष से अंतर्मुहूर्त काल तक रहता है, यानी नौवे अपगत वेद से लेकर दसवें तक एक प्रकृति का उदीरक है, वहां तक रहेगा। दो प्रकृतिक स्थान का उदीरक जघन्य से एक समय, वह उत्कर्ष से अंतर्मूर्त काल तक रहता है। ये भी अपगत वेदी वाला है, सॉरी सवेद वेद वाला है, नौवे गुणस्थान में एक समय के बाद मरा, भले चढ़ते समय या उतरते समय। चढ़ते समय में क्या हुआ, पहले ज्यादा था ना, चार प्रकृति वाला था और फिर दो प्रकृति वाला हुआ और एक समय में मिया मरा, या एक प्रकृति वाला था दो प्रकृति वाला हुआ और फिर एक समय में मरा। चार प्रकृतिक स्थान के उदीरक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है, ये सब में ऐसे ही घटित होगा। पांच प्रकृतिक स्थान के उदीरक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाण है, ये मोहनीय में चल रहे हैं। मूल प्रकृतियों के वो पांच का स्थान अभी यहाँ नहीं मत याद कर, मूल प्रकृतियों में भी हमने वो पांच का स्थान वगैरह देखे थे जहाँ पांच की उदीरणा होती थी, हमेशा तो आठ की होती है, आयु कुछ काल बाकी है तो सात की होती है, छठे तक छठे में से सातवें में गया तो छः की होने लगी, दो की रुक गई, इस तरह। उसकी बात यहाँ नहीं है, अकेले मोहनीय में प्रकृतियों के उदीरक स्थान देख रहे हैं। छह प्रकृतिक स्थान के उदीरक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाण है। सात प्रकृतिक स्थान के उदीरक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है। आठ प्रकृतिक स्थान के उदीरक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। नौ और दस प्रकृतिक स्थान के उदीरक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा काल समाप्त हुआ। हाँ देखो, ये एक अंतर्मूर्त कैसे घटित होगा, आप कहेंगे अरे मिथ्यात्व में तो बहुत काल तक रहता है, तो उतना का उतना रहना चाहिए था, परंतु भय में हमने ऑप्शन देखे ना, कभी दोनों में का उदय नहीं, कभी भय का है, कभी जुगुप्सा है, कभी दोनों का ही है। तो ये जो ऑप्शन हमने देखे वो अंतर्मूर्त काल तक वैसा रह सकता है। अंतर्मूर्त काल के बाद भय होगा तो जुगुप्सा का होगा शुरू, या उदय होगा तो अनुदय हो चालू हो जाएगा, इस तरह से। यानी होता है तो अंतर्मूर्त तक एक कोई ऑप्शन होगा, इसलिए उसका अधिक से अधिक काल अंतर्मूर्त और कम से कम एक समय, क्योंकि उस विकल्प में आया और एक समय में मर गया। मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रहा मरकर, परंतु इसमें वेरिएशन हो सकता है ना, इसलिए उसको एक समय घटित होता है। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर, अंतर बता रहे अभी। दस प्रकृतिक स्थान के उदीरक का अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से 266 सागरोपम प्रमाण है। दस प्रकृतिक वाला कहाँ देखा था हमने, मिथ्यात्व वाला है। हाँ, मिथ्या दृष्टि उसके सभी प्रकृतियां लिए थे। अब दस में से वो नौ हो जाएगा और वापस फिर दस में, दस वाला स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही, अन्यत्र कहीं नहीं है, इसलिए उसको चौथे में भेज दिया या ऊपर कहीं भी गया, दस में से अन्य में गया। तो समय दृष्टि उसका समय दर्शन रहने का उत्कृष्ट काल वो 66 सागरोपम दो लिया, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में भी बीच में चला जाएगा तो भी उसका वो अधिक से अधिक नौ वाला स्थान हो जाएगा, सात आठ नौ वाले स्थान है वहाँ पर, दस का तो होगा नहीं। दस का कब होगा, वापस मिथ्यात्व में आएगा तो ही, इसलिए दो बार 66 सागर लिए उसमें। हाँ, वेदक समय दृष्टि दो भाव ने, दो 66 सागर यानी वो देव के और मनुष्य के करता रहेगा ना, समय दृष्टि है वो। हाँ। वेदक समय दृष्टि है। हाँ? बीच में एक अंतर्मूर्त के लिए तीसरे में आया है। हाँ, उसके बिना 266 सागर नहीं घटित होते, लगातार 166 सागर तक ही वेदक समय तो टिकता है, उसके पश्चात एक अंतर्मूर्त में सम्यक मिथ्यात्व में आता है तीसरे गुणस्थान में और वापस चौथे में चला जाता है, फिर 66 सागर तक उसका चलता है।
यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है क्षयोपशम सम्यक्त्व जो होगा उसका लगातार क्षयोपशम सम्यक्त्व चालू रहे तो अधिक से अधिक 66 सागर ही रहेगा। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि 266 सागर, तो उसमें 266 सागर में बीच में एक 66 सागर पूरा होने के बाद वह जो एक अंतर्मुहूर्त के लिए तीसरे गुणस्थान में आएगा, हाँ, फिर एक अंतर्मुहूर्त से फिर वह चौथे में जाकर वहां से क्षयक्षम सम्यक्ति होकर और उसके 66 सागर तक वो टिका रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा है अपने को तो क्षयक्षम टूटता है कि नहीं बात नहीं, यहाँ दसवें स्थान में कब आता है उसकी बात है। तो वो उतना लगातार पीरियड जाने के बाद वो मिथ्यात्व में आएगा।
दस प्रकृति का स्थान यानी अंतर का कैसा होगा? एक तो अंतर मिथ्यात्व में ही रहा, परंतु भय जुगुप्सा दोनों का उदय था, उसमें से अकेले भय का हो जाएगा तो भी वो 9 का चालू होगा उसका, बिना दोनों के लिए तो भी उसमें 8 का चालू हो जाएगा, तो भी अंतर कहलाएगा अंतर्मूर्त। परंतु हमको बड़ा अंतर लेना है ना, तो बड़ा अंतर ऐसा है कि ऐसे गुण स्थानों में भेज दो कि जहाँ 10 का स्थान ही नहीं है, तो 10 वाले का स्थान अकेले मिथ्या तो गुणस्थान में ही है, ऊपर कहीं नहीं है। तो ऊपर यानी दूसरे तीसरे तो कोई नीचे से ऊपर जाएगा नहीं है, तो उसको ऊपर यानी चौथे में या पांचवे में, पांचवे में भी कंटिन्यूस नहीं रहेगा, भले चौथे पांचवे छठे सातवें करता भी रहे सबको इकट्ठा गिन लो, तो भी वेदक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल वापस उसको मिथ्या तो में लाना है ना, इसलिए उसको क्षायिक नहीं बनाना है। तो भले उपशम के साथ ऊपर चढ़ा और फिर उसने वो वेदक किया, फिर भी वहां रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? तो वेदक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल है 66 सागर। वेदक में से एक अंतर्मूर्त के लिए तीसरे गुणस्थान में आया, फिर दोबारा वेदक किया तो उसका और एक बार 66 सागर होता है। नहीं, उसका इतनी लिमिट है, मर्यादा ही उतनी है, लगातार तीसरी बार नहीं होगी। और वापस मिथ्यात्व में आएगा तब उसका अंतर घटित होगा, बिना मिथ्यात्व में आए क्षाई किया और मोक्ष चला गया तो वो कहाँ अंतर होगा? उसकी बात है, अंतर हमको बड़े में बड़ा अंतर घटित करना है, उसकी बात है। अब कुछ बोल दो 66 सागर एक साथ मत लेना, बीच में अंतर्मूर्त के लिए तीसरा गुण स्थान है, कंटिन्यूस निरंतर 66 सागर का ही उसका उसका काल है, वेदक का काल है, वो मिथ्यात्व का अंतर कहलाएगा। अकेले मिथ्यात्व का अंतर ऐसा नहीं लेना है हमको, परंतु वो 10 प्राकृतिक स्थान भी उसमें डालना है हमको, तो उसमें और भी थोड़ा कुछ अधिक कर सकते हैं हम। 10 में से वो 9 में आया था, मिथ्यात्व में था तभी, और फिर चढ़ा था वो, हाँ, तो अंतर्मूर्त और बढ़ा दो, फिर भी वो उसमें एक समा जाता है, इसलिए 266 सागर उपम कहा। अब 9 प्राकृतिक स्थान के उदीरक, तो उदीरक का अंतर जघन्य से एक समय, यानी 9 में से वो 10 में 10 वाला हो गया हमारा, या 9 में से 8 वाला होगा हमारा, वहाँ उसको गुणस्थान भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो जघन्य से एक समय मरा नहीं, वापस उसमें गया, सॉरी मरकर तो दूसरे भाव में उसका वो अलग हो सकता है ना, या 9 की उदीरना कहाँ से है? हाँ, तो सासादन में एक समय के लिए रहा और नीचे आया, और मिथ्यात्व में आकर उसका दूसरा कुछ हो गया, 8 का या 10 का हो जाएगा, तो हो सकता है। देखो देखो, 9 प्राकृतिक स्थान के उदीरक का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से कुछ कम पूर्व कोटि काल प्रमाण है, उत्कृष्ट रीति से उसको रहना है, फिर वापस 9 में नहीं आना है। तो 9 का स्थान कहाँ तक है? देखो चौथे, ये पहले वाला पेज निकालना, 82, हाँ, 4 तक है 9 के स्थान, पांचवे में नहीं है और ना छठे सातवें में है, तभी उसको पांचवे गुण स्थान में या संयत वाले बना दो, तो पूर्व कोटि में कुछ कम हो जाएगा, तो उतने काल तक उसको 9 का स्थान ही नहीं आया। अदरवाइज नीचे ही गुणस्थान में रहता तो अंतर्मूर्त वापस आ जाता उसका काल।
दो तीन चार में नौ गुणस्थान है,
नौ का स्थान है
हाँ।
इसलिए उसको ऊपर के गुणस्थानों में भेजना है।
अच्छा,
तो कितने काल तक लगातार रह सकता है ऊपर के गुणस्थान में? पांच का गुणस्थान जो है वो हम तीन पल्ले वाला नहीं ले सकते हैं, भोगभूमि वाला नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पांचवा गुणस्थान नहीं है, ना देव में भेज सकते हैं, ना नारक में भेज सकते हैं। पांचवें गुणस्थान के साथ उत्कृष्ट रहने का काल कितना है? पूर्व कोटि में कुछ कम, 8 साल कम करेंगे। फिर भी एक पूर्व कोटि होगा ना, पूर्व कोटि। अच्छा, सम्मूर्छन ले लेते हैं तो अंतर्मूर्त में हो जाता है। सम्मूर्छन तिर्यंच अंतर्मूर्त में प्राप्त करता है पांचवा गुणस्थान, सम्यक भी और पांचवा गुणस्थान भी, उसको ले लो ऐसा कहते हैं। तो भी पूर्व कोटि में कुछ कम, अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि हो जाएगा, तिर्यंच की अपेक्षा वो उत्कृष्ट हो जाएगा। मनुष्यों का उत्कृष्ट नहीं होगा। क्या कहा? हाँ, वैदक ही होगा वो, सम्मूर्छनों में औपशमिक नहीं होता। सम्मूर्छन जीवों में औपशमिक सम्यक तो होता ही नहीं, और क्षायिक वाले उसमें जन्मेंगे नहीं। अब आठ प्रकृतिक स्थान के उदीरक का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से कुछ कम पूर्व कोटि काल प्रमाण है। यहाँ ऊपर तो तिर्यंचों में भी घटित हो सकता था। अब ये पहले वाला पेज निकालो, आठ प्रकृतिक स्थान कहाँ तक है? देश विरत तक है, उसके ऊपर नहीं है। संयतों में आठ का स्थान ही नहीं है, तो आठ का स्थान वाला संयत हो गया, तो संयत में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? वापस आठ में लाना है उसको, तभी तो अंतर घटित होगा ना, वापस आठ में आना पड़ेगा। तो एक ही भाव में वो यानी वो सात के और या ऊपर के हो गए और फिर वापस आए, तो पूर्व कोटि में कुछ कम, 8 साल मनुष्य में घटित होगा मुनि की अपेक्षा। वीरता वीरत तक तो आठ है, उसके ऊपर भेजना है ना हमको, अंतर घटित करना है, इसलिए वो संयत हो गया। मनुष्य संयत का काल हो गया। अभी सात प्रकृतिक स्थान के उदीरक का जघन्य अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये सात वाला जो है देखो, सात वाला संयत में है, संयत में पॉसिबल है सात वाला। अभी उसको बाद में हाँ, मिथ्यात्व में आ गया, तो मिथ्यात्व में तो सात आठ है, परंतु मिथ्यात्व वाला सात वो कौन किसका है? अनंतानुबंधी की विषय योजना वाले का है। तभी वो गिर कर आए तो उसको वो नहीं लेना, तो आठ नौ और दस है, और वो मिथ्यात्व में रहते हुए एक इंद्रिय में चला गया या अन्य अन्यत्र भटका। अनंतानुबंधी की विषय योजना की नहीं है, उसको अनंतानुबंधी की विषय योजना कौन करेगा? सम्यक दृष्टि करेगा, जो बाद में मिथ्यात्व में जाएगा तो उसको सात का स्थान होगा। अब ये मिथ्यात्व हो गया है, दोबारा उसने सम्यक तो ही नहीं प्राप्त किया है, तो उसको ये सात वाला स्थान नहीं होगा। तो कितने काल तक भटकेगा मिथ्यात्व में? अर्धपुद्गल ये बता रहे हैं, सात का उत्कृष्ट अर्ध उपार्ध कहो अर्ध को एक ही बात है, उपार्ध पुद्गल है कुछ कम, ऐसा भी उसका अर्ध अर्ध पुद्गल परावर्तन, उसके पहले पहले वापस वो प्राप्त करेगा। हाँ देखो वैसे होगा, जैसे छह ये सात की हो गई ना बात, छह प्रकृतिक स्थान के ये उदीरक का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अभी छह वाला था और मिथ्या तो में चला गया, वहां तो कोई छह का स्थान ही नहीं है। छह का कहां देखा था हमने? चौथे वाले को देखा था, पांचवे वाले को देखा था, यानी ऊपर संयतों में भी देखा था। मिथ्यात्व में छह वाला स्थान नहीं, तो एक बार मिथ्यात्व में गया तो उत्कृष्ट रहने का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन। यहां भी लिखा देखो, छह का फिर पढ़ती हूँ। छह प्रकृति स्थान के उदीरक का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। जैसे छह प्रकृतिक स्थान के उदीरक का अंतरकाल है, वैसे ही पांच प्रकृतिक स्थान के उदीरक का अंतरकाल है, यानी वो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन। चार प्रकृतिक स्थान के उदीरक का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त, ये वहां एक समय नहीं घटित किया, अंतर यानी वापस उसमें आना है ना, चार का था और वापस चार में आना है, तो जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। चार वाला स्थान कहाँ देखा था हमने? आठवें गुणस्थान में देखा था। तो आठवें गुणस्थान में चार का हाँ ऊपर जाके वापस आया तो अंतर्मूर्त में वो घटित होगा, क्योंकि अगर हम मरण की अपेक्षा कर लेते तो अंतर कहाँ घटित होगा, वापस उसमें आना है ना। इसी प्रकार से दो प्रकृतियों के और एक प्रकृति के उदीरक के अंतरकाल का कथन करना चाहिए, वहाँ भी एक अंतर्मूर्त और अर्ध पुद्गल परावर्तन घटित होगा। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा अंतर समाप्त हुआ, अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय। 10, 9, 8, 7, 6, 5 और चार प्रकृतिक स्थानों के उदीरक जीव नियम से है, नियम से है। दो और एक प्रकृतिक स्थानों के उदीरक जीव भजनीय है। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय समाप्त हुआ। चार के उदीरक क्षायिक लेना, सातवा क्या होगा उसमें? सातवें वाले क्षायिक को एक वेद, एक कषाय, एक युगल और भय जुगुप्सा जीरो हो सकता है ना। हाँ, सातवें वाला क्षायिक नाना जीवन की अपेक्षा भंग विचय, यानी छठे सातवें में उनका वो चलेगा ना, हमेशा ही कोई ना कोई उसमें है। नाना जीवों की बात के एक जीव की अपेक्षा नहीं, अनेक जीवों की अपेक्षा, तो वहाँ कोई ना कोई जीव तो उसमें तो हो गई, छठे का होगा या सातवें का होगा उसमें कोई फर्क नहीं है। भय जुगुप्सा का उदय नहीं है, एक वेद है, एक कषाय है और एक युगल है। क्षायिक वाला छठा सातवा, ये चार वाला हमेशा है कहा ना, क्योंकि आठवें की अपेक्षा लेंगे तो वो हमेशा नहीं होते, इसलिए उसमें अंतर पड़ सकता है। अब दो और एक प्रकृतिक स्थानों के उदीरक जीव भजनीय, भजनीय ने ऑप्शनल है, कभी होगे कभी नहीं है। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय समाप्त हुआ। देखो चार प्रकृति नाना जीव की अपेक्षा हमेशा है ऐसा कहा, तो हमेशा तो आठवें गुणस्थान वाले हमेशा नहीं होते, तो हमेशा के लिए ऐसा कौन से कौन सा गुणस्थान होगा? छठे सातवा तो गुणस्थान हमेशा होता, तो छठे सातवें गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का उदय हो सकता है? तो एक वेद, एक कषाय, एक युगल, ये तो चार हो गए। तो भाई जुगुप्सा वाला जीरो वाला लेना पड़ेगा, हाँ तो क्षायिक लेना पड़ेगा, क्षायिक है, औपशमिक है। तो नाना जीवों की अपेक्षा काल बताएंगे अभी, पहले है कि नहीं कौन से है वो बताया, जो हमेशा होते हैं उसमें भी कितना काल तक रहते हैं उसकी बात पूछ रहे हैं। एक व दो प्रकृतियों के उदीरक, जहाँ हमेशा ही होते हैं उनका काल तो हमेशा है, कभी कभी होते हैं तो उसमें जघन्य और उत्कृष्ट काल कहेंगे। तो एक व दो प्रकृतियों के उदीरक जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मुहूर्त काल तक रहते हैं। शेष स्थानों के उदीरकों का काल सर्वदा है। इस प्रकार काल समाप्त हुआ। अब अंतर, जहां सर्वदा है वहां अंतर नहीं होगा, और एक और दो में ही अंतर पड़ सकता है। एक और दो प्राकृतिक स्थानों की उदीरणा का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से छह मास होता है। शेष प्राकृतिक स्थानों की उदीरणा का अंतर संभव नहीं है, इस प्रकार अंतर समाप्त हुआ। अब सन्निकर्ष, सन्निकर्ष किसको कहा था याद है? हाँ, उसके साथ अन्य कौन कौन सी प्रकृति, वो स्वस्थान भी किया था और परस्थान भी हमने देखा था। एक प्रकृतिक स्थान का उदीरक दो प्रकृतिक स्थान का उदीरक नहीं होता है, इसी प्रकार चार पांच आदि शेष प्रकृतिक स्थानों को कहना चाहिए। जब हमने अलग अलग प्रकृतियों की बात की थी तो उसमें स्वस्थान परस्थान घटित होता था, पर यहाँ जब हमने स्थानों में सन्निकर्ष कैसे हो सकता है, जब हम एक प्राकृतिक स्थान कहते हैं तो जहाँ एक प्रकृति है वहाँ दो प्राकृतिक नहीं हो सकता, भंग उसके अलग हो सकते हैं, पर स्थान तो बता दिए तो उतना ही स्थान वहाँ होगा। इस प्रकार स्थव स्थानों की प्ररूपना करनी चाहिए, इस प्रकार सन्निकर्ष समाप्त हुआ। अब अल्पभूतव, अल्पभूतव ने एक प्रकृति की उदीरणा करने वाला, एक स्थान वाले जीव ज्यादा है कि दो वाले ज्यादा है कि चार वाले ज्यादा है कि दस वाले ज्यादा है? हाँ। तो कहते एक प्राकृतिक स्थान के उदीरक सबसे स्तोक है, उनसे दो प्राकृतिक स्थान के उदीरक संख्यात गुणे हैं, उनसे चार प्राकृतिक स्थान के उदीरक संख्यात गुणे हैं, उनसे पांच प्राकृतिक स्थान के उदीरक असंख्यात गुणे हैं। ये पांच वाले हम नीचे आले, पांच प्राकृतिक वाला स्थान, ये वीरता वीरत से शुरू हो जाता है, और उसमें भी क्षायिक होगी ना, उसमें क्षायिक अविरत के भी हो सकेगा। नहीं, छः सात आठ नौ लिया था, पाँच छः सात आठ लिया, विरता विरत में लिया उसको। उनसे छह प्राकृतिक स्थान के उदीरक असंख्यात गुणे हैं, उनसे सात प्राकृतिक स्थान के उदीरक संख्यात गुणे हैं, उनसे दस प्राकृतिक स्थान के उदीरक अनंत गुणे हैं। ये सभी अनंत गुणे ने एक इंद्रियों को निगोदों को लिया इसमें। उनसे नौ प्राकृतिक स्थान के उदीरक असंख्यात गुणे हैं, ओहो अनंत गुणे से भी असंख्यात गुणे, यानी या भय या जुगुप्सा, ऐसा दस वाले के से वो नौ वाले ज्यादा है। उनसे आठ प्राकृतिक स्थान के उदीरक संख्यात गुणे हैं, यानी सबसे ज्यादा वो आठ वाले हैं। दस लगा अपने। आदेश की अपेक्षा, आदेश यानी अभी मार्गणाओं में और डिटेल। आदेश की अपेक्षा नरक गति में छह प्राकृतिक स्थान के उदीरक सबसे स्तोक है, सात प्रकृतिक स्थान के उदीरक असंख्यात गुणे हैं। नरकों में छह प्रकृति के कहाँ है, क्या है? हाँ, चौथे क्षायिक और औपशमिक भी ले सकते हैं उसमें। हाँ, कैसे छह प्रकृति कैसे होगी? हाँ, कषाय कितने लेना? हाँ, सम्यक दृष्टि है, क्षाय क्या औपशमिक ले लेंगे। हाँ, तीन चोग, हाँ, तीन कषाय, एक वेद, एक युगल। हाँ, और हो गया ना, तीन कषाय, एक वेद और एक युगल, छह हो गए। और भयजुगुप्सा जीरो, या फिर वेदक को लेगे तो तो नहीं होगा, क्षायिक में ही घटित होगा, क्षायिक और औपशमिक में।
क्षायिक लेंगे तो ऊपर का ले लेंगे ना, क्षायिक में समय जीरो हो गया तो ऊपर का भय लेना पड़ेगा।
कैसे? क्षायिक ही घटित किया हमने अभी तो, छह वाला है वो क्षायिक वाला ही लिया है, क्षायिक और औपशमिक वाले को ही लिया है। वे भी सबसे स्तोक है। सात प्रकृतिक स्थान के उदीरक असंख्यात गुणे हैं। सात में आप वेदक वाले ले सकते हैं, वेदक। हाँ, या सात वाले में तो दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले भी लेगी ना उसमें। फिर दस प्रकृतिक स्थान के उदीरक असंख्यात गुणे हैं। नौ प्रकृतिक स्थान के उदीरक संख्यात गुणे हैं। और आठ प्रकृतिक स्थान के उदीरक संख्यात गुणे हैं। आठ वाले ज्यादा है। हाँ, दोनों नहीं ऐसे लिए। इसी प्रकार से सब नारक है ना, अलग अलग नरकों में नारक, सामान्य देव और भवरवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों के विषय में अल्प भूतव का कथन करना चाहिए। अल्प भूतों में कोई फर्क नहीं है, कौन से वाले स्थान किससे कितने गुना है वही कथन होगा। तिर्यंचों में पांच प्रकृतिक स्थान के उदीरक स्तोक है। ये पांचवे गुणस्थान में भी पांच वाला स्थान है ना, तिर्यंचों में तो पांच ही गुणस्थान है। भले मुनियों के पांच का स्थान है परंतु तिर्यंचों में बता दिया ना स्पेसिफिकली, तो पांच वाला स्थान चौथे तक तो नहीं था, पांचवे वाले को है। शायक तो नहीं ले सकते। हाँ, तिरेंचों में पांचवे गुण स्थान में तो क्षायिक होता नहीं, तो चौथे में लेना पड़ेगा। तो एक सम्यक प्रकृति, दो कषाय, एक वेद, एक युगल। अरे छह हो जाएगा ना, फिर पांच वाला कैसे ले? तो क्षायिक लिया तो दो कषाय, एक वेद, युगल, हाँ, विदाउट भय युगल सा, तो चौथा ही गुणस्थान लेना पड़ेगा। हाँ, पर चौथे गुणस्थान में कैसा हुआ ये? पांचवा होता है ना, पांचवे में क्षायिक, परंतु पांचवे में क्षायिक हो सकता है परंतु तिर्यंचों में क्षायिक के साथ पांचवा नहीं होता है। तो चौथे में क्षायिक है तो तीन कषाय गिनो, एक वेद और एक युगल, छह हो जाता है। क्षायिक चौथे वाले को हो सकता है, भूगभूमि वाले के चौथा यहाँ से जाता है ना, क्षायिक वाला मर कर जाता है वहाँ, जैसे नरकों में जाते हैं क्षायिक, वैसे क्षायिक समय दृष्टि सम्यक तो होने से पहले जिन्होंने तिर्यंचा भी बांधी है वो मर कर साइक के साथ तीर इंच होगा। ये पांच का हिस्सा लिया यहाँ, ऑप्शन एक को ले सकते हैं, ऑप्शन एक को ले सकते
हैं।
हाँ, औपशमिक के साथ वो पांचवे में गया, औपशमिक के साथ पांचवे में गया, तो दो कषाय, दो कषाय, पांचवे में गया वो, औपशमिक के साथ पांचवे में गया। हाँ, दो कषाय, एक वेद और एक युगल, द्वितीय औपशम नहीं, प्रथम औपशम। मरण का कहाँ प्रश्न है यहाँ पर, तीरियंचो में वो भी गर्भज होने चाहिए, कर्म भूमि के गर्भज, भोगभूमि के नहीं चलेंगे। यानी पांचवे गुणस्थान वाला उपशमिक लेना, हम क्षायिक क्षायिक को ढूंढ रहे थे ना, यानी यहाँ तो समूर्चन भी नहीं ले सकते हो, गर्भज तीर्यंच लेना है। छह प्रकृति स्थान के उदीरक असंख्यात गुणे हैं, आगे ओग के समान कथन करना चाहिए, यानी जो हमने सामान्य औपशमिक नहीं होगा, सम्मूर्छन वालों को वेदक होता है, वेदक होता है तो एक प्रकृति बढ़ जाएगी ना, हमको पांच वाला स्थान चाहिए, इसलिए औपशमिक वाले के लिए गर्भज लेना चाहिए। ऐसा नियम है, सम्मूर्छनों में औपशमिक सम्यक्त्व नहीं होता, प्रथम औपशम सम्यक्त्व के लिए नियम है कि गर्भज, मनुष्य और तीर्यंचों के लिए वो गर्भज ही होने चाहिए, मनुष्य तो गर्भज ही होते हैं, तीर्यंचों के लिए ये रूल होगा, क्योंकि सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तीर्यंच सम्यक्त्व तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु तो वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे, प्रथम औपशम को नहीं प्राप्त करेंगे। यानी कोई सादी मिथ्या दृष्टि होगी ना, तभी तो वेदक करेंगे वो, मिथ्यात्व के साथ वो तीरियंच में घूम रहे हैं, वो सत्ता में पड़ी है तीन प्रकृति की सत्ता, तो हाँ तो वेदक कर लिए उन्होंने। हाँ देखो, छह प्रकृति स्थान के उदीरक असंख्यात गुणे हैं, आगे ओग के समान कथन करना चाहिए। इसी प्रकार से ओग के समान यानी वो दस वाला, नौ वाला, आठ वाला, इसी प्रकार से पंचेंद्रिय तीरंच आदि तीन के संबंध में कहना चाहिए। तीन कौन से हुए, पंचेंद्रिय तीरंच आदि तीन में? हाँ बोलो अरविंद भाई, बताना चाहते हाँ। पंचेंद्रिय तीरंच में सामान्य लेना, फिर पर्याप्त लेना, और फिर योनिमति लेना। विशेष इतना है, इनमें दस प्राकृतिक स्थान के उदीरक असंख्यात गुणे हैं। पंचेंद्रियों में अनंत गुणा नहीं संभव है, अनंत गुणा जो तीर्यंचों में, सामान्य तीर्यंचों में अनंत गुणा कहा था, वहां एक इंद्रियों में तो निगोध है, वो अनंत है, इसलिए वहां अनंत गुणा घटित हुआ था, अब यहाँ अनंत गुणा घटित नहीं होगा। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों और मनुष्य अपर्याप्तकों में दस प्राकृतिक स्थान के उदीरक स्तोक अपर्याप्तों की बात है, नौ के उदीरक संख्यात गुणे तथा आठ के उदीरक संख्यात गुणे हैं। यानी जिसको भय, जुगुप्सा दोनों का उदीर नहीं है, वो ज्यादा है संख्यात गुणे। मनुष्यों में ऐसा भी है, हाँ सब जगह अंतर्मुख चेंज हुआ तो भी इनको ज्यादा बताए ना, नाना जीवन की अपेक्षा संख्या बता रही है। हाँ तो समान कहना चाहिए थी, तो इसका अंतर्मुख छोटा बड़ा होगा, हाँ आदत हो जाती है। मनुष्यों में एक प्रकृतिक स्थान के उदीरक स्तोक अभी मनुष्यों की अपेक्षा लिए, दो के उदीरक संख्यात गुणे, ये तो सामान्य में भी आए था क्योंकि वहां मनुष्यों की अपेक्षा थी। फिर चार के उदीरक संख्यात गुणे, पांच के उदीरक संख्यात गुणे, छह के उदीरक संख्यात गुणे, सात के उदीरक संख्यात गुणे, अभी दस के उदीरक असंख्यात गुणे। असंख्यात गुणे कैसा किया मन, हाँ अपर्याप्तों में भी लिया उसको, सम्मूर्छन मनुष्यों को। ब्रैकेट नहीं चाहिए था, चदुन्नम पवेसिय संख्यज, हाँ ऊपर ब्रैकेट नहीं है, रेगुलर दिया है, हाँ ये ब्रैकेट निकाल देना इसको। दस के असंख्यात गुणे, नौ के संख्यात गुणे तथा आठ के उदीरक संख्यात गुणे, यानी उससे संख्यात गुणे ऐसा लेना। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम के विषय में कथन करना चाहिए। अब यहाँ असंख्यात गुणा नहीं होगा, विशेष इतना है जहाँ मनुष्यों में असंख्यात गुणा कहा गया है वहाँ इनमें संख्यात गुणा कहना चाहिए। मनुष्यों में जब कहा था तो सामान्य लिए थे, पर्याप्त पर्याप्त सब मिलकर, अब पर्याप्त मनुष्य जब कह रहे हैं या मनुष्य नहीं कह रहे तो वहां तो संख्यात ही है, तो उसमें संख्यात गुणा घटित होगा। आनंद स्वर्ग को आदि लेकर नौ ग्रहवेग पर्यंत देवों में दस प्रकृतिक स्थान के उदीरक स्तोक, छह के उदीरक संख्यात गुणे, नौ के उदीरक संख्यात गुणे, आठ के उदीरक संख्यात गुणे और सात के उदीरक संख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार अनुदिशों से लेकर अनुदिशों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक कथन करना चाहिए। विशेष इतना कि यहाँ दस के उदीरक नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ वो मिथ्या तो गुणस्थानी नहीं है, तो दस का कोई उदीरक नहीं होगा। आयु कर्म की स्थान उदीरणा नहीं है, यानी उसमें कोई एक का स्थान दो का स्थान ऐसे बाकी नहीं है, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, उसको स्थान उदीरणा नहीं कहा। नरक गति में ये नाम कर्मों में ले रहे भी, हाँ नाम कर्म के 21, 25, 27, 28, 29 प्रकृतियों के पांच उदीरणा स्थान होते हैं। 21 वाला स्थान किसके होता है? विग्रह गति वालों को होता है। 25 वाला नरक गति का चल रहा है, हाँ हाँ मिश्र काल में, हाँ विग्रह गति के बाद जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती उतने काल तक 25 का कहा। मिश्र काल कहलाता है जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक।
पहला चला विग्रह का, वो विग्रह गति काल चला,
विग्रह गति का काल है, दूसरा मिश्र काल कहते हैं। हाँ मिश्र में कौन से बड़े बोलो भाई, 21 में से 25 कैसे हुए बोलो? नहीं रहते, देखो 21 में से एक कम करो, अनुपूर्वी को कम करो बराबर, और पांच बढ़ाओ, हाँ वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, प्रत्येक शरीर नाम कर्म, और फिर संस्थान नाम कर्म और उपघात, पांच बढ़ गए। एक कम हुआ, अनुपूर्वी कम हुआ और ये पांच बढ़ गए, प्रत्येक शरीर। अब 27 हुए, 27 शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही 27 हुए, कौन से दो बढ़े? हाँ हाँ अभी यहाँ भाषा भीषा नहीं, अभी शरीर पर्याप्ति पूरी हुई है, परघात और अप्रशस्त विहायु गति नरक गति है ना, बाकी होते तो हम विहायु गति इतना ही कहते हैं। 27वें 28 उच्छ्वास पर्याप्ति होने पर देखो अप्रशस्त विहाय गति और परगात दो बढ़ गए। उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर उच्छ्वास नाम कर्म 28 हो गए और भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर दूसवर नाम कर्म का उद्देश्य 29 हो गए। तो 29 का स्थान उदीर्णा स्थान होते हैं, उनमें 21 प्रकृतियों के उदीर्णा स्थान की प्ररूपना करते हैं। ये 21 प्रकृतियां कौन सी है उसको बता रहे हैं। नरक गति पंचेंद्रिय जाति, तेजस कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, नरक गति प्राज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु, त्रस बादर पर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग अनादेय, अयशस कीर्ति और निर्माण। ये 21 बताई, इसमें से ध्रुवोदयी कौन कौन सी है। पंचेंद्रिय जाति ध्रुवोदयी नहीं है क्योंकि 5 जाति में से किसी एक जाति का उदय होता है। हाँ हाँ, तेजस कारमान गिनो, तेजस कारमान, वर्ण गंध रस स्पर्श, फिर अगुर लघु, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और निर्माण। दुर्भग या सुभग का ऑप्शन है ना किसी के। नरक गति की बात नहीं चल रही, सामान्यपने ध्रुवोदयी प्रकृतियां कौन सी है। 12 ध्रुवोदयी है और 9 तो ऑप्शन है परंतु होती ही है, यानी किसी न किसी गति का तो उदय होगा ही। विग्रह गति में जो 21 प्रकृतियों का उदय है उसमें से 12 तो ध्रुवोदयी है। किसी भी गति में जाओ और किसी भी जाति में जाओ तो ये ध्रुवोदय तो 12 गिनी। अब ऑप्शनल कैसी है, 4 गति में से एक तो गति, जाति एक, किसी में से एक गति जाति हुई ना, और गति के साथ गत्यानुपूर्वी भी ले लो तो गति गत्यानुपूर्वी और जाति, ये 3 हो गए। हाँ 3 ऑप्शन। फिर त्रस या स्थावर, हाँ बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, ये 3 जोड़ी में से एक एक होगा कोई। पहले तो गति जाति और गत्यानुपूर्वी देखे ना, वो 3, ये त्रस बादर पर्याप्त, ये 3, हाँ 6 हुए। फिर दुर्भग अनादे और अयश कीर्ति, इनमें से ऑप्शन है
दुर्भग अनादे
और अयश कीर्ति, निर्माण ध्रुवोदयी। ये दुर्भग होगा या सुभग होगा, अनादेय होगा या आदेय होगा, यश कीर्ति या अयश कीर्ति होंगे। तो ये 12 और ये 9 विग्रह गति में इनका उदय होता ही है। 12 तो सब चारों गति में सभी जातियों में कॉमन है, उसका तो उदय रहेगा ही रहेगा, और बाकी जो ये 9 है उनका उदय तो रहेगा परंतु ऑप्शनल है। कौन से, गति जाति गत्यानुपूर्वी 3, फिर हमने कौन से त्रस बादर पर्याप्त या उसके अपोजिट, और फिर दुर्भग अनादेय और अयश कीर्ति या उसका अपोजिट। ये सुस्वर वगैरह नहीं लेना यहाँ, हाँ क्योंकि विग्रह गति में उसका उदय नहीं होता। शंका, इस स्थान का स्वामी कौन है, तो कहते हैं विग्रह गति में वर्तमान सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नारक जीव उक्त स्थान का स्वामी है। ये नरक गति में लगा रहे ना इसलिए नरकों में लिया, तो 2 ही गुणस्थान लिए, दूसरा और तीसरा क्यों नहीं लिया। हाँ नरक, दूसरे वाला मरकर नरक में नहीं जाता, ये विग्रह गति की बात है, तीसरे में मरण नहीं होता, इसलिए विग्रह गति के लिए ये 21 वाला स्थान जो है उसको बता दिया। 21-25 हो आगे वाले हो गए, 21 वाले में वो स्थान नहीं होगा। तो दूसरे गुणस्थान वाले के लिए और तीसरे गुणस्थान वाले के लिए इनमें से कौन कौन से स्थान होंगे नरक गति में। अभी हमने ऊपर स्थानों के देखे थे, हाँ 27 वाला होगा और हाँ और अकेला 29 वाला ही होना चाहिए मैं क्या में आता है दूसरा गुण स्थान और तीसरा गुण स्थान पर्याप्त जीवों में ही प्राप्त होगा। नहीं समझे, कहीं से दूसरे भाव से साथ में नहीं लाया उन्होंने, तो पर्याप्त होने के बाद उन जीवों को दूसरा या तीसरा गुण स्थान प्राप्त होगा। यानी पर्याप्त जीव प्रथम उपशम समय तो प्राप्त करके दूसरे में आएंगे तब संभव है। या तीसरे वाला कैसा होगा, पहले में से तीसरे में जाएगा या चौथे में से तीसरे में आएगा तब संभव है। तो ये पर्याप्तों में संभव है। तो पर्याप्ति पूर्ण होती है तो ये भाषा पर्याप्ति का काल अंत तक चलता है, उसको 29 वाला स्थान होगा। इसका काल जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से उत्कर्ष से दो समय है। दो ही समय क्यों? विग्रह गति का काल है हाँ, और नारकियों में जाने के लिए दो समय से अधिक ज्यादा नहीं लगता। दो मोड़ से, तीसरा मोड़ वो सूक्ष्म एकेंद्रियों में ही होता है, अन्यत्र कहीं नहीं होता, इसलिए दो समय उत्कृष्ट कहा। पूर्वोक्त प्रकृतियों में से अनुपूर्वी को कम करके वैक्रेक शरीर, हुंडक संस्थान, सभी नारकियों में हुंडक संस्थान ही होता है, वैक्रेक शरीर, अंगोपांग, उपघात और प्रत्येक शरीर, इन पांच प्रकृतियों को मिला देने पर 25 प्रकृतियों का उदीर्णा स्थान होता है। वह किसके होता है? जिसने शरीर ग्रहण कर लिया है ऐसे नारक जीव के होता है। वह कितने काल तक होता है? तो शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय को आदि करके शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के उपांत समय तक होता है। पूरी होते ही उसका वो आगे वाला स्थान 27 वाला शुरू हो जाएगा। अभिप्राय यह है कि वह अंतर्मूर्त काल तक रहता है। यही रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नऊ सदा देत हो। प्रेरणा।